नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Nut Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। ग्रोकिंग एल्गोरिदम्स आदित्य भार्गव की चित्रों पर आधारित कंप्यूटर विज्ञान की परिचयात्मक पुस्तक है। इसका लक्ष्य एल्गोरिदम को केवल याद रखने योग्य सूत्रों के रूप में नहीं, बल्कि प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने वाली व्यावहारिक प्रक्रियाओं के रूप में समझाना है। पुस्तक की शुरुआत खोज और क्रमबद्ध करने जैसे बुनियादी कार्यों से होती है, फिर हैश टेबल, रिकर्शन, ग्राफ, लालची एल्गोरिदम, डायनामिक प्रोग्रामिंग और एनपी पूर्ण समस्याओं तक बढ़ती है। उदाहरणों में पाइथन का उपयोग है, पर मुख्य जोर किसी भाषा के सिंटैक्स से अधिक समस्या को छोटे चरणों में देखने पर है। भार्गव की विशिष्ट पद्धति विस्तृत चित्रों, रोजमर्रा की उपमाओं और छोटी कोड उदाहरणों को साथ रखती है, इसलिए पाठक समय और स्मृति की लागत, अलग डेटा संरचनाओं के प्रभाव तथा किसी समस्या के लिए उपयुक्त तरीका चुनने की बुनियाद सीखता है। यह कठोर गणितीय प्रमाणों वाली संदर्भ पुस्तक नहीं है, बल्कि एल्गोरिदमिक सोच में प्रवेश कराने वाला सुगम मार्गदर्शक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले बाइनरी सर्च से गति और बिग ओ की व्यावहारिक समझ। पुस्तक एल्गोरिदम की चर्चा बाइनरी सर्च से शुरू करती है, क्योंकि यह एक ही समस्या के लिए दो अलग तरीकों की लागत स्पष्ट दिखाता है। क्रमबद्ध सूची में किसी नाम या संख्या को ढूंढने के लिए साधारण खोज हर तत्व को बारी बारी जांच सकती है। इसके विपरीत बाइनरी सर्च बीच के तत्व से तुलना करके हर चरण में संभावित सूची का लगभग आधा भाग हटा देती है। यह अंतर केवल तेज कोड लिखने का मामला नहीं है, बल्कि समस्या की संरचना पहचानने का अभ्यास है। बाइनरी सर्च तभी काम करती है जब डेटा क्रमबद्ध हो, इसलिए पुस्तक गति पाने के बदले पूर्व तैयारी की लागत पर भी ध्यान दिलाती है। इसी आधार पर बिग ओ संकेतन प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी मशीन पर सटीक सेकंड बताना नहीं, बल्कि इनपुट बढ़ने पर काम की मात्रा किस दर से बढ़ेगी या तुलना करना है। रैखिक, लघुगणकीय, वर्गीय और अन्य वृद्धि दरों का अंतर पाठक को समझाता है कि छोटी सूची पर स्वीकार्य दिखने वाला तरीका बड़े डेटा पर अनुपयोगी हो सकता है। चित्रों के माध्यम से यह विषय सूत्र केंद्रित नहीं रहता। पाठक यह सोचना सीखता है कि खोज की जगह घटाई जा सकती है या नहीं, और क्या क्रमबद्धता बनाए रखना उस लाभ के योग्य है। दूसरा, एरे, लिंक्ड लिस्ट और हैश टेबल में डेटा विन्यास का चयन। ग्रोकिंग एल्गोरिदम्स यह महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करती है कि एल्गोरिदम की कार्यक्षमता डेटा रखने के तरीके से अलग नहीं होती। एरे में किसी स्थान तक सीधे पहुंच आसान होती है, लेकिन बीच में नया तत्व जोड़ना या हटाना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बाद के तत्वों को खिसकाना होता है। लिंक्ड लिस्ट में नोडों के बीच कड़ियां होने से सही स्थान मिल जाने पर जोड़ना और हटाना सुविधाजनक हो सकता है, पर किसी दूरस्थ स्थान तक पहुंचने के लिए क्रम से चलना पड़ता है। पुस्तक इन अंश को अमूर्त परिभाषाओं के बजाय दृश्य विन्यास से समझाती है। हैश टेबल तीसरा उपयोगी विकल्प है। कुंजी को हैश फंक्शन के जरिए स्थान से जोड़कर यह औसतन बहुत तेज खोज, जोड़ और हटाने की सुविधा देती है। फिर भी यह जादुई समाधान नहीं है। टकराव होने पर एक से अधिक कुंजियां एक ही स्थान से जुड़ सकती हैं और अच्छी हैशिंग तथा उपयुक्त आकार महत्वपूर्ण बनते हैं। फोन बुक, वस्तुओं की सूची या वेबसाइट कैश जैसे उदाहरणों के पीछे यही विचार काम करता है। इस भाग की उपयोगिता यह है कि पाठक पहले ऑपरेशन पहचानता है, जैसे त्वरित पहुंच चाहिए या बार बार प्रविष्टि, फिर डेटा संरचना चुनता है। पुस्तक इस चयन को प्रदर्शन, स्मृति और उपयोग के प्रकार के बीच ठोस व्यापार विनिमय के रूप में रखती है। तीसरा, रिकर्शन और डिवाइड एंड कॉन्कर से समस्या को छोटे रूप में बदलना। रिकर्शन को पुस्तक ऐसी तकनीक के रूप में रखती है जिसमें एक फंक्शन समस्या के छोटे संस्करण पर स्वयं को बुलाता है, लेकिन उपयोगी रिकर्शन के लिए दो बातें अनिवार्य है। पहला, बेस केस होना चाहिए जिसमें फंक्शन आगे कॉल किए बिना उत्तर देता है। दूसरा, हर रिकर्सिव कॉल समस्या को वास्तव में बेस केस के निकट ले जाए। इन दोनों के बिना कॉल स्टैक भर सकता है और प्रोग्राम रुक सकता है। पुस्तक कॉल स्टैक की दृश्य व्याख्या देकर बताती है कि सक्रिय फंक्शन कॉल कैसे अस्थायी रूप से जमा होते हैं और उत्तर लौटते समय किस क्रम में हटते हैं। यही आधार डिवाइड एंड कॉन्कर के लिए बनता है। इस पद्धति में बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, हिस्सों को हल किया जाता है और उत्तरों को जोड़ा जाता है। क्विकसॉर्ट इसका प्रमुख उदाहरण है। एक पिवट चुनकर छोटे और बड़े तत्व अलग किए जाते हैं, फिर दोनों भागों पर वही प्रक्रिया लागू होती है। इससे क्रमबद्धता किसी एक विशाल कदम से नहीं, छोटे निर्णयों की श्रृंखला से बनती है। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि पिवट का चयन प्रदर्शन को प्रभावित करता है, इसलिए पाठक केवल कोड की पंक्तियां नहीं, बल्कि विभाजन के ढंग और इनपुट की प्रकृति के संबंध को समझता है। यह दृष्टि फाइलों, सूचियों और जटिल निर्णयों को पुनरावृत छोटे प्रश्नों में बदलने में सहायक होती है, चौथा ग्राफ, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डाइक्स्ट्रा से सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना। पुस्तक ग्राफ एल्गोरिदम के माध्यम से उन समस्याओं को समझाती है जिनमें वस्तुओं के बीच संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्ति और मित्रता, शहर और सड़क या वेब पेज और लिंक, सभी को नोड और किनारों वाले ग्राफ के रूप में देखा जा सकता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च निकटतम स्तर से खोज आगे बढ़ाती है। क्यू का प्रयोग सुनिश्चित करता है कि पहले सीधे जुड़े नोड देखे जाएं, फिर उनसे एक कदम दूर वाले नोड। इसलिए जब सभी कड़ियों की लागत समान मानी जाए, यह सबसे कम चरणों वाला रास्ता खोजने में उपयोगी है। देखे जा चुके नोडों का रिकॉर्ड रखना भी आवश्यक है, वरना चक्र वाले ग्राफ में वही नोड बार बार जांचे जा सकते हैं। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम इस विचार को भारित ग्राफ तक ले जाता है, जहां हर रास्ते की लागत अलग हो सकती है। वह हर चरण में सबसे कम ज्ञात लागत वाले अनदेखे नोड को चुनता है और उसके पड़ोसियों तक पहुंचने की लागत सुधारने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया से केवल पहुंचना नहीं, न्यूनतम कुल लागत वाला मार्ग लक्ष्य बनता है। पुस्तक की सीमा भी समझनी चाहिए। डाइक्स्ट्रा नकारात्मक भार वाले किनारों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस अध्याय का व्यापक सबक है कि समस्या को संबंधों और लागतों के मॉडल में बदलना सही खोज पद्धति चुनने से पहले का निर्णायक कदम है। अंत में लालची चयन, डायनामिक प्रोग्रामिंग और एनपी पूर्णता की सीमाएं। पुस्तक के बाद के भाग यह दिखाते हैं कि हर समस्या का तेज और पूर्ण उत्तर एक ही प्रकार की रणनीति से नहीं मिलता। लालची एल्गोरिदम हर चरण में उस समय का सबसे अच्छा दिखने वाला विकल्प चुनता है। सेट कवर जैसी समस्याओं में यह उपयोगी अनुमान दे सकता है, क्योंकि वह प्रत्येक दौर में सबसे अधिक शेष जरूरतें पूरी करने वाला विकल्प चुनता है। इसकी ताकत सरलता और व्यावहारिक गति है, लेकिन स्थानीय रूप से अच्छा निर्णय हर बार वैश्विक रूप से सर्वोत्तम उत्तर की गारंटी नहीं देता। डायनामिक प्रोग्रामिंग अलग स्थिति में उपयोगी होती है, जब समस्या को उप समस्याओं में बांटा जा सकता है और उनके उत्तर दोबारा काम आते हैं। पुस्तक इसका ढांचा तालिका के रूप में समझाती है। पंक्तियां संभावित विकल्पों और स्तंभ उपलब्ध क्षमता या स्थिति को दिखा सकते हैं। हर खाने में पहले से हल छोटी समस्या के आधार पर बेहतर विकल्प दर्ज होता है। इस तरह नैपसैक जैसे निर्णयों में बहुत से संयोजनों को व्यवस्थित ढंग से परखा जाता है। एनपी पूर्ण समस्याओं की चर्चा पाठक को कंप्यूटिंग की व्यावहारिक सीमा से परिचित कराती है। कुछ समस्याओं में इनपुट बढ़ते ही सभी संभावनाएं जांचना अत्यधिक महंगा हो जाता है। इसलिए लक्ष्य कभी सटीक उत्तर, कभी उपयोगी अनुमान और कभी समस्या का छोटा रूप बनाना होता है। यह भाग एल्गोरिदम को केवल तकनीकों की सूची नहीं, सीमाओं के भीतर निर्णय लेने की कला के रूप में प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष में, ग्रोकिंग एल्गोरिदम्स उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या सीख रहे हैं, लेकिन डेटा संरचनाओं और एल्गोरिदम के पीछे का तर्क अभी सहज नहीं है। स्वशिक्षित डेवलपर, पाइथन के शुरुआती पाठक, तकनीकी साक्षात्कार की बुनियाद तैयार करने वाले अभ्यर्थी और अपने पुराने कंप्यूटर विज्ञान ज्ञान को ताजा करने वाले इंजीनियर सभी इससे लाभ ले सकते हैं। इसका व्यावहारिक लाभ किसी तैयार उत्तर को याद करना नहीं, बल्कि समस्या की प्रकृति के अनुसार खोज, क्रमबद्धता, ग्राफ, हैशिंग या अनुकूलन की रणनीति चुन पाना है। पाठक बड़े इनपुट पर प्रदर्शन का अनुमान लगाना, डेटा विन्यास के व्यापार विनिमय पहचानना और जटिल प्रश्न को छोटे उपप्रश्नों में बांटना सीखता है। पुस्तक समान विषय की कई पुस्तकों से इसलिए अलग है कि यह औपचारिक प्रमाणों और भारी गणित को प्रवेश द्वार नहीं बनाते। इसके चित्र, क्रमिक उदाहरण और संक्षिप्त पाइथन कोड अमूर्त प्रक्रियाओं को देखने योग्य बनाते हैं। फिर भी इसे उन्नत एल्गोरिदम सिद्धांत या कठोर विश्लेषण का पूर्ण विकल्प नहीं समझना चाहिए। जटिल प्रमाण, व्यापक विविधताएं और गहरी सैद्धांतिक अध्ययन के लिए आगे की सामग्री जरूरी होगी। इसकी सही भूमिका मजबूत अंतर्ज्ञान निर्मित करना है। इसी कारण यह पुस्तक पाठक को एल्गोरिदम से भय हटाकर आगे अधिक तकनीकी अध्ययन और वास्तविक सॉफ्टवेयर निर्णयों के लिए ठोस आधार देती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं आदित्य भागवा, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।